أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. प्यारे दोस्तों और हमारे इस कार्यक्रम के सभी प्रिय दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी ईश्वर से यही आशा है कि आप सभी अपने जीवन में खुश, सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम से जिस बातचीत को आरंभ किया था वो एतिकाफ़ से संबंधित थी। हम सभी जानते हैं कि एतिकाफ़ एक मुस्तहब कार्य है, कि अगर इसको किया जाए, जिसके बारे में बहुत ताकीद की गई है, तो सवाब मिलता है। लेकिन एतिकाफ़ में एक शर्त यह है कि जिस समय इंसान एतिकाफ़ करना चाह रहा है, जहां बहुत सी शर्तें जो हमने पिछले कार्यक्रम में बयान की थीं उनको पूरा करे, उनमें से एक शर्त यह है कि एतिकाफ़ वही कर सकता है जो रोज़ा रखने पर सामर्थ्य रखता हो। यानी जो व्यक्ति एतिकाफ़ में कम से कम 3 दिन रोज़ा रख सकता हो वही एतिकाफ़ कर सकता है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति रोज़ा नहीं रख सकता है तो एतिकाफ़ नहीं कर सकता है, उसका एतिकाफ़ सही नहीं होगा। जैसे वो यात्री जिसका रोज़ा और नमाज कसर है वो एतिकाफ़ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उन दिनों में रोज़ा नहीं रख सकता है। या वो महिलाएं जो मासिक धर्म में चल रही हैं, चूँकि उनके ऊपर उस समय रोज़ा रखना सही नहीं है, इसलिए वो एतिकाफ़ भी नहीं कर सकती हैं। या वो महिलाएं जो बच्चा जनने के बाद खून देख रही हैं, जिसको हम निफास का खून कहते हैं, वो महिलाएं भी रोज़ा नहीं रख सकती। या कोई मरीज़ है, बीमार है, जो रोज़ा नहीं रख सकता है, जैसे कि प्यास का मरीज़ है तो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो ऐसा व्यक्ति भी एतिकाफ़ नहीं कर सकता है। एतिकाफ़ करने के लिए शर्त ये है कि जिस समय इंसान एतिकाफ़ पर बैठे उसमें कम से कम 3 दिन रोज़ा अवश्य रखे। और दूसरी चीज़ एतिकाफ़ में रोज़े संबंधित ये है कि ईद और बकरीद से 2 दिन पहले से एतिकाफ़ को आरंभ नहीं किया जा सकता है, या ख़ुद ईद और बकरीद के दिन से ही एतिकाफ़ को आरंभ नहीं किया जा सकता है। यानी एतिकाफ़ की स्थिति इस प्रकार नहीं हो सकती है कि ईद से 2 दिन पहले एतिकाफ़ शुरू करे और एक तीसरा दिन या जो अंतिम दिन है वो ईद वाले दिन पड़े या बकरीद वाले दिन पड़े, या स्वयं बकरीद और ईद वाले दिन से एतिकाफ़ शुरू करे, ऐसा नहीं कर सकता है। अब शायद किसी के जहन में प्रश्न उठे, आखिर क्यों? क्योंकि हमने आपके सामने अभी बताया है कि एतिकाफ़ में एक शर्त यह है कि इंसान जिस समय एतिकाफ़ कर रहा है उस समय वो कम से कम जो 3 दिन की एतिकाफ़ की अवधि है उसमें रोज़ा रखे। और हम और आप सभी जानते हैं, हर मुसलमान ये जानता है कि ईद और बकरीद वाले दिन रोज़ा रखना हराम है। चूँकि ईद और बकरीद के दिन रोज़ा रखना हराम है, इसलिए एतिकाफ़ की अवधि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि उसमें से कोई एक दिन भी ईद का दिन पड़े। अगर ऐसा पड़ रहा है तो वो एतिकाफ़ सही नहीं होगा। उसके बाद शर्त यह है कि एतिकाफ़ में हमने आपसे कहा कि रोज़ा रखना शर्त है, लेकिन अब ये सवाल ये है, प्रश्न ये है कि कौन सा रोज़ा रखे। क्या एतिकाफ़ के लिए कोई विशेष रोज़ा है कि मसलन हम नियत करें कि एतिकाफ़ ही का रोज़ा रखा जाए? तो इसमें हमारे फुकहा कहते हैं नहीं, एतिकाफ़ के लिए कोई विशेष रोज़े की नियत नहीं करने की आवश्यकता है, बल्कि कोई सा भी रोज़ा हो वो एतिकाफ़ के दिनों में रखा जा सकता है। मसलन मान लीजिए किसी के रमज़ान के रोज़ा क़ज़ा है, उसको क़ज़ा रोज़ा रखना है, अगर वो एतिकाफ़ में चला जाता है तो और 3 दिन उसको रोज़ा रखना है, अगर तीनों दिन वो क़ज़ा रोज़े की नियत से भी रोज़ा रख ले तब भी उसका एतिकाफ़ सही होगा। या अगर किसी ने इजारे के ऊपर रोज़ा ले रखा है तो वो अगर एतिकाफ़ के दिनों में इजारे का रोज़ा रख ले तो उसका एतिकाफ़ सही होगा। शर्त रोज़ा रखना है, कौन सा रोज़ा रखा जाए ये शर्त नहीं है, कोई सा भी इंसान रोज़ा रख सकता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब यात्रा पर जाता है तो उस यात्रा पर जाने से पहले ये नज़र करता है कि मैं यात्रा पर जाऊंगा और यात्रा के दिनों में ही रोज़ा रखूंगा। तो चूंकि उसने शर्त रखी है यात्रा के दिनों में रोज़ा रखने की, तो क्या ऐसा व्यक्ति जो यात्रा के दिनों में अपनी नज़र के कारण रोज़ा रख रहा है एतिकाफ़ कर सकता है या नहीं? तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति यात्रा में नज़र के रोज़े की नियत कर चुका हो तो वो बिना 10 दिन ठहरने की नियत किए हुए भी वहाँ पर एतिकाफ़ कर सकता है, क्योंकि वो रोज़ा रख रहा है, लिहाजा उसका एतिकाफ़ भी सही होगा। तो ये एतिकाफ़ से रोज़े से संबंधित कुछ मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए। उसके बाद एतिकाफ़ की जहाँ बहुत सी शर्तें हैं, उसमें कुछ एक शर्त ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए एतिकाफ़ करने से पहले अनिवार्य ये है, शर्त ये है कि वो कुछ लोगों से अनुमति लें। उनकी शर्तों की विवरण क्या है, तौज़ीह क्या है, हम इसको इंशाल्लाह आगे अपने बयान में वाज़े करेंगे, स्पष्ट करेंगे आपके सामने। सबसे पहले वो जिसके लिए अनुमति शर्त है वो हैं महिलाएं, यानी जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए आवश्यक ये है कि एतिकाफ़ करने से पहले अपनी पत्नी अपने पति की अनुमति लें। उसके बाद वो बच्चे जो एतिकाफ़ करना चाहते हैं उनके लिए अनिवार्य ये है कि एतिकाफ़ करने से पहले अपने माता पिता की अनुमति लें। उसके बाद तीसरे लोग जिनके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है वो ये है कि वो लोग जो किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर ये लोग एतिकाफ़ करना चाहते हैं तो जिससे जिसके कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसकी मजदूरी कर रहे हैं, जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उससे अनुमति लेना इनके लिए अनिवार्य है। तो हमने जैसे आपके सामने बताया कि तीन लोग ऐसे हैं जिनके लिए एतिकाफ़ से पहले आवश्यक ये है कि अनुमति लें। सबसे पहली जो शख्सियत थी वो ये है कि महिलाएं अपने पति से अनुमति लें। अगर एतिकाफ़ महिला का एतिकाफ़ करना पति के अधिकारों के हनन का कारण बनता हो तो ऐसे समय में महिला के एतिकाफ़ करने के लिए अनिवार्य ये है कि वो अपने पति से अनुमति ले। इसी प्रकार अगर वो घर से बाहर भी निकलना चाहती है और उससे उसके पति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, हनन हो रहा हो, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि अपने पति की अनुमति ले, उसके बाद घर से बाहर निकले। उसके बाद हमने जैसे बताया कि बच्चों के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर बच्चों का एतिकाफ़ करना माता पिता के लिए परेशानी, कठिनाई और अज़ियत का कारण बनता हो तो ऐसे बच्चों का एतिकाफ़ सही नहीं है। और अगर कठिनाई, परेशानी और अज़ियत का कारण न बनता हो तब भी एहतियात मुस्तहब ये है कि बच्चों को चाहिए कि एतिकाफ़ करने से पहले अपने माता पिता की अनुमति अवश्य लें। उसके बाद हमने बताया कि ये तीन प्रकार के लोग हैं जिनको अनुमति लेना अनिवार्य है। तीसरे वो लोग जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में या नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है, किसी के अनुबंध में काम कर रहा है या किसी विभाग में नौकरी कर रहा है, तो अगर उसका अनुबंध और कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का हो कि जिस अवधि भर उसको एतिकाफ़ में जाना है उस अवधि का लाभ उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो, यानी उसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करना हो या उस नौकरी से संबंधित उसमें उस समय में उसको नौकरी वाला काम करना ज़रूरी हो, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि एतिकाफ़ करने से पहले उस व्यक्ति से जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है या जिससे मजदूरी जिसके लिए कर रहा है उसकी अनुमति ले। और अगर वो किसी जॉब में है तो उसके लिए अनिवार्य ये है कि जिस भी जॉब में है उसके संबंधित विभाग से अपने लिए छुट्टी ले, उसके बाद वो एतिकाफ़ पर जाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए शायद एतिकाफ़ करना सही ना हो। ये वो चीज़ हुई जिनमें अनुमति लेना आवश्यक है। उसके बाद जब इंसान एतिकाफ़ पर चला गया, अब एतिकाफ़ पर आ गया है, मस्जिद में बैठ चुका है, अब उसके लिए जब एतिकाफ़ पे इंसान आ गया तो कुछ चीज़ें उसके ऊपर होती हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको करना है, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको नहीं करना है। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो एतिकाफ़ करते समय इंसान के ऊपर करना हराम है, उसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ खुशबू सूंघना, इत्र सूंघना, खुशबूदार घास जैसे गुलाब का फूल सूंघना, इस प्रकार की चीज़ें सूंघना अगर मज़े के लिए हो, अगर ये सब चीज़ें मज़े के लिए हैं तो उसके ऊपर करना हराम है और एक एतिकाफ़ करने वाले व्यक्ति को एतिकाफ़ की स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो एतिकाफ़ की स्थिति में हराम है वो ये है ख़रीदना और बेचना। ये किसी प्रकार का ख़रीदना और बेचना, कुछ भी ख़रीदना बेचना हो, ये कार्य करना एतिकाफ़ की स्थिति में हराम है और एक मोतकिफ़ को जो एतिकाफ़ कर रहा है नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हराम है एतिकाफ़ में वो ये है कि दूसरे अन्य प्रकार के व्यापार या ख़रीद बेच के अलावा कोई और तरीके की कार्य करना, जैसे किसी चीज़ को किराए पर देना, किसी चीज़ को किराए पर लेना। ये वो चीज़ें हैं जो एहतियात वाजिब ये है कि इनको नहीं करना चाहिए, और एहतियात वाजिब के अनुसार ये कार्य एतिकाफ़ की स्थिति में एतिकाफ़ करते समय करना हराम है और एक एतिकाफ़ करने वाले को ये कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद दुनियावी कार्य के लिए हो या चाहे उखरवी कार्य के लिए हो, दीनी काम के लिए हो चाहे किसी और कार्य के लिए हो, बहस करना जिसमें बहस का लक्ष्य ये हो कि इंसान सामने वाले के ऊपर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दे। तो अगर इसमें श्रेष्ठता को सिद्ध करना मापदंड है, उसकी नीयत है, उसका लक्ष्य है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहस करना भी और जेदाल करना भी हराम है, और एतिकाफ़ की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद शारीरिक इच्छाओं से संबंधित कार्य, वासनाओं वाले कार्य, जैसे चूमना, बोसा लेना, छूना, और इस प्रकार के कार्य भी करना एतिकाफ़ की स्थिति में हराम है और एक एतिकाफ़ करने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उसके बाद एहतियात वाजिब ये है कि हस्त मैथुन, जिसको हम इस्तिमना भी कहते हैं, ये भी करना एतिकाफ़ की स्थिति में हराम है और एक एतिकाफ़ करने वाले व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये वो कार्य हुए जो हमने आपके सामने बयान किया, एतिकाफ़ करने वाले को नहीं करना चाहिए और एतिकाफ़ की स्थिति में ये कार्य करना हराम है। उसके बाद कुछ कार्य ऐसे हैं जो अगर एक एतिकाफ़ करने वाला एतिकाफ़ की स्थिति में, चाहे वो किसी भी दिन हो, जैसे कि हमने आपके सामने बताया कि एतिकाफ़ की अवधि कम से कम 3 दिन है, इन 3 दिन में से किसी भी एक दिन भी अगर इन कार्यों में से जो हम अभी आपको बताएंगे कर ले, तो उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाता है, एतिकाफ़ टूट जाता है। वो कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहली चीज़, अगर एतिकाफ़ करने वाला व्यक्ति एतिकाफ़ की स्थिति में कोई ऐसा कार्य कर ले जिससे उसका रोज़ा टूट जाए, रोज़ा बातिल हो जाए, तो जैसे ही रोज़ा बातिल होगा उसका एतिकाफ़ भी बातिल हो जाएगा। क्योंकि हमने आपके सामने कई बार ये बात बताई है कि एतिकाफ़ में शर्त ये है कि जितनी अवधि भर इंसान एतिकाफ़ कर रहा है उतनी अवधि भर दिनों को रोज़ा रखे, तो जैसे ही उसका रोज़ा टूटेगा उसका एतिकाफ़ भी बातिल हो जाएगा, उसका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ एतिकाफ़ को बातिल कर देती है, एतिकाफ़ के टूटने का कारण बनती है, वो ये है कि इंसान संभोग करे, चाहे वो जानबूझ के करे चाहे भूले से करे। अगर इंसान एतिकाफ़ की स्थिति में जानते बूझते या भूले से संभोग करता है अपनी पत्नी के साथ, तो ये संभोग करना उसके एतिकाफ़ के टूट जाने का कारण बनेगा और उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ जो एतिकाफ़ को बातिल कर देती है वो ये है कि अगर एतिकाफ़ करने वाला वासना के साथ, यानी वासना की स्थिति में, किसी दूसरे को चूमे, उसको छुए, या कोई ऐसा कार्य करे जिससे एतिकाफ़ टूट जाता है, तो चाहे ये जानबूझ के हो चाहे भूले से हो, एहतियात वाजिब ये है कि अगर उसने ऐसा कार्य किया है वासना की स्थिति में, तो उसको चाहिए कि जो एतिकाफ़ कर रहा है उस एतिकाफ़ को समाप्त करे। और अगर ये एतिकाफ़ वाजिब था, मसलन उसने नज़र कर रखी थी कि मैं एक एतिकाफ़ करूँगा, तो अगर वाजिब था तो उसको बाद में दोबारा करे, या जैसे अगर तीसरे दिन में अगर इसने ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि उसको एतिकाफ़ समाप्त करने के बाद दूसरी बार दोबारा एतिकाफ़ करे। अगर तीसरे दिन भी ये कार्य किया है तब भी उसको दोबारा एतिकाफ़ करना होगा, क्योंकि एतिकाफ़ के पहले जो 2 दिन हैं वो मुस्तहब हैं, उसका जो तीसरा दिन आता है वो एतिकाफ़ को वाजिब कर देता है। यानी इसमें शर्त ये है कि वासना के साथ इन कार्यों को अंजाम दिया जाए, चाहे जानबूझ के हों और चाहे भूले से। एहतियात वाजिब ये कहता है कि एतिकाफ़ को समाप्त करे अपने इस एतिकाफ़ को, यानी अगर पहले या दूसरे दिन में ऐसा कार्य किया है तो 3ों दिन उसको पूरा करे, उसके बाद अगर एतिकाफ़ वाजिब हो गया था जैसे नज़र कर रखी थी, दोबारा एतिकाफ़ करे, अगर तीसरे दिन में किया है तब भी उसके ऊपर एतिकाफ़ दोबारा करना वाजिब है। तो ये वो मसले थे जो हमने आपके सामने भी बयान किए, एतिकाफ़ से संबंधित थे। हमने आज के अगर कार्यक्रम का सारांश आपके सामने बयान करना चाहें, सारांश कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमने एतिकाफ़ में जो रोज़े रखे जाते हैं उससे संबंधित कुछ अहकाम आपके सामने बयान किए। उसके बाद हमने उन लोगों की स्थिति बताई जिनमें, जिन लोगों के लिए एतिकाफ़ करने के लिए आवश्यक ये है कि वो संबंधित व्यक्तियों से अनुमति लें, जिसमें हमने मसलन पत्नी का तذکرہ किया, उसके बाद बच्चों का और नौकरी करने वालों का। उसके बाद हमने आपके सामने बताया एहतिकाफ़ में कौन से ऐसे कार्य हैं जो हराम हैं। उसके बाद हमने अंत में आपके सामने ये बयान किया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ विशेष कार्य जो अभी हमने आपके सामने बयान किए हैं एहतिकाफ़ की स्थिति में कर लेता है तो उसका एहतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। इसके बाद भी हम इंशाल्लाह आपके सामने और भी अहकाम पर आधारित कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ईश्वर की छत्र छाया में छोड़ता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।